ये रेडियो नेपाल है। हिंदी समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं रमिता यादव। आरंभ में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का कल त्रिवी सिक्शन अस्पताल में किया जाएगा किडनी का ट्रांसप्लांट। राष्ट्रीय सभा के 19 सदस्यों का 2 साल का कार्यकाल हुआ पूरा। 2 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद अर्थमंत्री डॉ युवराज खतिवड़ा ने दिया मंत्री पद से इस्तीफा। वैदेशिक रोजगारी के लिए विदेश जाने वाले कामगारों की श्रम स्वीकृति तत्काल के लिए स्थगित करने का सरकार का निर्णय। और कोरोना वायरस के कारण अमेरिका में हुई 6 लोगों की मौत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का कल किडनी ट्रांसप्लांट किया जाएगा। प्रधानमंत्री ओली का किडनी ट्रांसप्लांट काठमांडू के महाराजगंज स्थित त्रिवी सिक्शन अस्पताल मनमोहन कार्डियोथोरासिक वास्कुलर एंड ट्रांसप्लांट सेंटर में किया जाएगा। इससे पहले अस्पताल ने बताया कि प्रधानमंत्री ओली का संपूर्ण स्वास्थ्य परीक्षण हो चुका है। राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के कल होने वाले किडनी ट्रांसप्लांट के सफलता की कामना की है। राष्ट्रपति भंडारी ने आज ट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। इसी तरह नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचंड ने प्रधानमंत्री ओली के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। राष्ट्रीय सभा की आज की बैठक ने पारमाणिक विधेयक 2075 को दफावार विचार विमर्श के लिए विधान व्यवस्थापन समिति में भेजे जाने के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकृत किया है। इस प्रस्ताव को शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री गिरिराज मणि पोखरियाल की तरफ से श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री रामेश्वर राय यादव ने सदन में प्रस्तुत किया था। इसी तरह बैठक में दीर्घकालीन विकास तथा सुशासन समिति के सभापति तारादेवी भट्ट ने भौतिक पूर्वाधार तथा सुशासन संबंधी अंतर्क्रिया कार्यक्रम एवं राष्ट्रीय महत्व के परियोजनाओं का अनुगमन और स्थानीय न्यायिक समिति का स्थलगत अनुगमन संबंधी प्रतिवेदन 2076 पेश किया था। राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने अर्थ संचार और सूचना प्रविधि मंत्रालय की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को सौंपी है। अर्थमंत्री डॉ युवराज खतिवड़ा ने आज अपने पद से इस्तीफा दिया है, जिसके बाद प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति भंडारी ने अर्थ और संचार मंत्रालय की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री ओली को सौंपी। इसकी जानकारी राष्ट्रपति कार्यालय ने दी। इससे पहले अर्थ संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री डॉ युवराज खतिवड़ा ने उपभोक्ताओं को दूरसंचार सेवा प्रदाय कंपनी द्वारा सरल और सहज रूप में सेवा प्रदान किए जाने की आवश्यकता पर जोर दिया था। नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण की 22वें वार्षिकोत्सव के अवसर पर आज काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने उपभोक्ताओं को अधिक से अधिक सेवा प्रदान करने का आग्रह किया। साथ ही उन्होंने दूरसंचार के मुख्य पूर्वाधार जैसे सैटेलाइट, मोबाइल टावर, ब्रॉडबैंड, ऑप्टिकल फाइबर आदि सेवाओं को बहुआयामिक बहुउपयोगी बनाने की विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता पर जोर दिया। सरकार ने वैदेशिक रोजगारी में जाने वाले कामगारों की श्रम स्वीकृति को फिलहाल के लिए स्थगित किया है। चीन से फैले कोरोना वायरस का संक्रमण विश्वव्यापी रूप में फैलता जा रहा है, इसके मद्देनजर करते हुए सरकार ने ऐसा निर्णय लिया है। इसकी जानकारी श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय ने दी। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के प्रदेश नंबर 1 में होने वाली प्रदेश स्तरीय भेंटघाट तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम स्थगित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नेपाल को कोरोना वायरस की उच्च जोखिम सूची में रखे जाने के बाद सरकार ने सार्वजनिक सभा सम्मेलन न करने की जानकारी के पश्चात आज झापा की वर्ता मोड़ में होने वाली इस कार्यक्रम को स्थगित किया गया। सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटा ने कहा कि जनता की अपेक्षाओं और भावनाओं के अनुरूप काम करने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूं। आज सिंधुपालचुक जिले के सुकुटे में जारी सुकुटे महोत्सव के समापन कार्यक्रम में सभामुख सापकोटा ने कहा कि हम जनता की अपेक्षाओं पर घात नहीं होने देंगे। मतदाता नामावली संकलन तथा अधावधिक विशेष कार्यक्रम 2076 क्रियान्वयन के संबंध में राजनीतिक दल के प्रमुख तथा प्रतिनिधियों के साथ निर्वाचन आयोग ने आज विचार विमर्श किया है। मतदाता नामावली संकलन कार्य को और प्रभावकारी बनाने के लिए आयोग ने सभी दलों के साथ विचार विमर्श किया। आयोग ने इसे फागुन 7 गति से आषाढ़ महीने तक मतदाता नामावली संकलन तथा अधावधिक विशेष कार्यक्रम संचालन का काम शुरू किया है। विचार विमर्श में प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलिया ने कहा कि त्रुटि रहित मतदाता नामावली संकलन तथा अधावधिक करने के कार्य को चुस्त दुरुस्त रूप में संपन्न करने कराने में राजनीतिक दलों की ओर से सक्रिय और प्रभावकारी भूमिका की अपेक्षा है। महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्री पार्वत गुरुंग ने कहा कि जातीय भेदभाव और छुआछूत अंत्य के लिए सरकार राष्ट्रीय अभियान संचालन करेगी। आज राष्ट्रीय दलित पत्रकार संघ के प्रतिनिधियों के साथ किए गए मुलाकात में मंत्री गुरुंग ने कहा कि जातीय भेदभाव और छुआछूत अंत्य के लिए विभिन्न राजनीतिक दल तथा सामाजिक संघ संस्थाओं के साथ समन्वयन कर काम करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। अब वक्त है एक छोटे से व्यावसायिक विश्राम का।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाई कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ला, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटिसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415# गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा के वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल ने कहा कि पार्टी के भीतर देखे गए सामान्य विवादों को व्यवस्थापन किया जा सकता है। आज रौतहट के गौर में ऐतिहासिक कला कुंज पुस्तकालय भवन का शिलान्यास करते हुए वरिष्ठ नेता नेपाल ने कोरोना वायरस नियंत्रण के लिए नेपाल सरकार ने समय पर ही सजगता अपनाने की बात की प्रशंसा करते हुए इसके रोकथाम में सभी को एकजुट होने की बात पर जोर दिया। मकवानपुर में 6 किलो से अधिक सोना सहित भारतीय नागरिक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। काठमांडू से वीरगंज की ओर जा रही रात्रि बस को पूर्व पश्चिम राजमार्ग के हेटौड़ा 15 रातो माटे में चेक जांच करने के दौरान सोना सहित भारत कर्नाटक के 42 वर्षीय अब्दुल मजीद अनेकल को गिरफ्तार किए जाने की जानकारी पुलिस ने दी। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिका में भी कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। देश में 6 मरीजों की मौत के बाद संक्रमण की रोकथाम के लिए बड़े पैमाने पर लोगों की जांच की तैयारी की गई है। ट्रंप प्रशासन ने कहा कि वायरस को लेकर इस हफ्ते के आखिर तक करीब 10 लाख लोगों की जांच की जा सकती है। अमेरिका में करीब 100 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि मौत के सभी 6 मामले वाशिंगटन प्रांत में सामने आए हैं। संक्रमित लोगों में 48 मरीज ऐसे हैं जो दूसरे देशों से अमेरिका आए हैं। अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि अभी उन्हें महज 337 टेस्ट किट मिली है। निजी निर्माता जल्द ही 2500 अतिरिक्त किट्स मुहैया करा सकते हैं। एक किट से करीब 350 लोगों की जांच हो सकती है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार ट्रंप प्रशासन के कोरोना वायरस टास्क फोर्स में भारतीय मूल की सीमा वर्मा को अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। उपराष्ट्रपति पेंस ने ये जानकारी दी है। कोरोना वायरस के चलते कई देशों ने विदेशी नागरिकों के लिए अपना रास्ता बंद कर दिया है। भारत ने भी इसी कड़ी में कदम उठाते हुए ईरान, इटली, दक्षिण कोरिया और जापान के नागरिक का वीजा निलंबन करने का फैसला किया है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 23.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार शीर्षक एक बार फिर। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का कल त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल में किया जाएगा किडनी का ट्रांसप्लांट। राष्ट्रीय सभा के 19 सदस्यों का 2 साल का कार्यकाल हुआ पूरा। 2 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद अर्थमंत्री डॉ युवराज खतीवड़ा ने दिया मंत्री पद से इस्तीफा। वैदेशिक रोजगारी के लिए विदेश जाने वाले कामगारों की श्रम स्वीकृति तत्काल के लिए स्थगित करने का सरकार का निर्णय और कोरोना वायरस के कारण अमेरिका में हुई 6 लोगों की मौत। इसी के साथ हिंदी समाचार बुलेटिन से इजाजत दीजिए। सुनते रहिए रेडियो नेपाल। नमस्कार, शुभरात्रि।